अभी हम श्री काम्यवन के बहुत महत्वपूर्ण स्थान में आए हैं, जिसका नाम है राधा गोविंद मंदिर और अधिकतर इसको वृंदा देवी मंदिर के रूप में जाना जाता है। पौराणिक जो कथा है इसके विषय में वो ये है कि ये जो मंदिर है इसका जितना भी प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको और भी लंबा, इससे भी सोचिए आप, इस वेदी पर चतुर्भुज विष्णु का विवाह दुर्गा देवी से हुआ था, जिसमें ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने मिलकर भगवान के चरणों का अभिषेक किया था। और एक स्थान है यहाँ पर जो अभी मैं फिर भी ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम है चरणामृत कुंड, जहाँ पर विष्णु भगवान के चरणों का जो ब्रह्मा जी के नेतृत्व में अभिषेक किया गया उसका जल इकट्ठा हुआ। तो ऐसे ही सुंदर वेदी है जहाँ पर आप बैठे हैं, जैसे एग्जैक्टली यहाँ पर श्री रामा प्रभु बैठे हैं, श्री रामा सखा प्रभु, वो वेदी है जो भगवान चतुर्भुज विष्णु का इस पर विवाह हुआ था और भगवान की दिव्य इच्छा से उसी पर वृंदा देवी का, राधा गोविंद देव का मंदिर बना। तो इसका इतिहास ऐसा है कि भगवान के जो जिसको कहते हैं ना प्रपौत्र यानी ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ कृष्णा, कृष्ण भगवान के जो रुक्मिणी के पुत्र है उनका नाम है प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र का नाम है अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के पुत्र का नाम है वज्रनाम। तो वज्रनाम जो है वो जब भी कृष्ण भगवान अंतर्धान हो रहे थे तो उन्होंने उनको आदेश दिया था कि आप ब्रज को अच्छी तरह बसाओ, मैं जाने के बाद में मेरी लीला स्थलियों को ठीक तरह से आप स्थापन करो। तो धाम का जो पुनर्स्थापना होती है या जीर्णोद्धार होता है तो वो तीन तरीके से होता है, एक है वन, एक है सर और एक है विग्रह। सर यानी जलाशय, वन यानी फॉरेस्ट और विग्रह यानी भगवान की मूर्तियां। इस तीन प्रकार से धाम का उद्धार होता है। तो वज्रनाम ने बड़ी ही शास्त्रोक्त पद्धति से इन तीनों तीनों तरीके से धाम का पुनर्स्थापना किया। धाम तो था ही वैसे, लेकिन उसको ऐसा स्वरूप दिया कि जो आगे लोग आएंगे दर्शन करने के लिए वो उसका पूरी तरह लाभ ले सकते हैं। इसलिए जो वास्तविक ब्रज जो है वो वन में है, आज मंदिर बने हैं वो तो बाद में बने हुए हैं, लेकिन ये पौराणिक स्थल है और ये पौराणिक ऐतिहासिक विग्रहों की स्थापना यहाँ पर की गई है। तो वज्रनाम ने सबसे पहले तीन विग्रह बनाए, पहला विग्रह बनाया उसके चरण कमल उत्तरा को दिखाने के बाद वो कहे कि इनके चरण कमल साक्षात भगवान के जैसे हैं, तो वो विग्रह बने राधा मदन मोहन जी। क्या बने? राधा मदन मोहन जी के चरण चिन्ह भगवान जैसे ही हैं। तो और एक विग्रह बनाए तो उनका जो उत्तरा ने कहा कि उनका जो वक्षस्थल है वो साक्षात कृष्ण की तरह है, तो वो बना राधा गोविंद जी का विग्रह। और तीसरा जो है उसमें थोड़ा सा पता है ना, उसको छोड़ देंगे हम उसको। तीसरा जो विग्रह बना उसका मुख कमल जो है वो साक्षात भगवान के मुख कमल से मिलता जुलता है, ऐसे उत्तरा ने बताया, तो उसका नाम राधा गोपीनाथ जी रखा गया। तो ये तीन प्रमुख विग्रह हैं और भगवान के संबंध के लिए मदन मोहन जी, संबंध होने के बाद सेवा के लिए गोविंद जी और सेवा में परिपूर्णता के लिए गोपीनाथ जी, ऐसे तीन विग्रह बनाए गए और उनको वृंदावन में स्थापन किए गए। मदन मोहन जी के आचार्य सनातन गोस्वामी बने और गोविंद देव के आचार्य रूप गोस्वामी बने और गोपीनाथ जी के आचार्य मधु पंडित बने। और वज्रनाम ने पुनर्स्थापन करने के पश्चात कुछ समय के बाद ये सारे लुप्त हो गए। फिर मदन मोहन जी को सनातन गोस्वामी के आशीर्वाद में पुनर प्रकट किया गया। उसके पहले मदन मोहन जी अद्वैत आचार्य के लिए प्रकट हुए थे अद्वैत वट इस जगह पर, फिर वहां से मथुरा चले गए थे और मथुरा से फिर सनातन गोस्वामी उनको वृंदावन लेके आए और फिर उनका भव्य मंदिर बना। योगपीठ नाम की जगह है वृंदावन में, जहाँ पर रूप गोस्वामी को भगवान ने स्वप्न दिया और बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। एक गाय वहाँ पर पहुँचती थी और रोज दूध छोड़ती थी वहाँ पर, खाली थन से घर लौटती थी। तो उसको पीछा करते करते उसका ग्वाली आया और उसको वो मारना चाहता था क्योंकि वो दूध नहीं मिलता था उसको। लेकिन रूप गोस्वामी को भगवान ने सपने दिया और बताया कि मैं इस स्टील के नीचे हूँ, मुझे वहाँ से बाहर निकाला। तो फिर वेदवासियों की सहायता से रूप गोस्वामी ने राधा गोविंद जी के विग्रह प्रकट किए उस योगपीठ नाम के स्थान से। वो आज भी स्थान वहाँ पर है जहाँ पर गोविंद जी का मंदिर बना है। फिर वो प्रकट होने के बाद में वो पेड़ के नीचे रहते थे। तो एक दिन अकबर के सेनापति राजा मान सिंह जो है, वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे, वो आए। उन्होंने उस समय रघुनाथ भट्ट जी ने भी गोविंद जी की सेवा की है बहुत समय तक। रघुनाथ भट्ट जी बहुत अलग अलग रागों में श्रीमद् भागवत को गाया करते थे। दे वर एक्सपर्ट इन सिंगिंग श्रीमद् भागवत इन वैरायटी ऑफ ट्यून्स ऑफ क्लासिकल रागस। तो मान सिंह राजा ने सेवा करने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने मंदिर बनाने के लिए कहा। तो गोविंद देव का भव्य मंदिर 7 मंजिल का बनाया गया और उसके बाद में मधु पंडित द्वारा गोपीनाथ का प्रकट हुआ। गोपीनाथ स्वयं प्रकट हो गए और मधु पंडित के लिए उन्होंने इच्छा प्रकट की कि क्या वरदान दूँ आपको। तो मधु पंडित ने कहा कि आप यहीं पर विग्रह रूप में रहो। फिर उसी जमुना किनारे पे बंसीवट किनारे गोपीनाथ जी का विग्रह स्थापन किया गया, यथावकाश उसका मंदिर बना। जब 17वीं सदी में औरंगजेब का आतंक हुआ तो जब ये खबर आई कि औरंगजेब आ रहा है, क्योंकि आगरा में उसका महल था और जब एक बार छत पे अपने खड़े था तो उसको दूर एक बहुत आकाश में ऊंची मशाल दिखाई पड़ी जलती हुई। तो उसने पूछा कि क्या है ये। तो सरदारों ने कहा कि हिंदुओं का मंदिर है ये। तो इतना ऊंचा मंदिर, हमारे महल से भी ऊंचा मंदिर, उसने कहा इसको तोड़ देना चाहिए। तो उसने फिर ब्रिज में आक्रमण करने का निर्णय लिया। तो ब्रिज में खबर फैल गई कि वो आ रहा है और उसका मेन काम था कि वो मंदिरों के साथ मंदिरों की मूर्ति भी भग्न करता था, उसको छिन्न विच्छिन्न करता था। इसलिए सारे विग्रहों ने सारे आचार्यों के निर्देश में सारे विग्रहों को यहाँ से जयपुर भेजने का प्लान बनाया। क्योंकि जयपुर के राजा बहुत बड़े क्षत्रिय थे और बड़े वैष्णव भक्त भी थे और वो औरंगजेब कभी वहाँ तक नहीं पहुँचा क्योंकि वो बड़े वीर थे, शूर थे बहुत। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करना, आपके सारे विग्रहों की रक्षा हम करेंगे, उनका पूजन करेंगे, उनका सब कुछ सेवा करेंगे, आप निश्चिंत रहो। तो फिर प्लान बनाया गया कि यहाँ से सारे विग्रह जयपुर जाएंगे। तो सब विग्रह निकले हैं वृंदावन से और सभी विग्रह राधाकुंड में कुछ समय से रुके हैं। और राधाकुंड में इसलिए जितने भी विग्रह हमारे गौड़ीय वैष्णवों के हैं और संप्रदायों के हैं, वो सभी विग्रह है राधाकुंड के आसपास में आपको मिलेंगे। पूरा वृंदावन का दर्शन आपको वहीं मिलेगा सब कुछ, क्योंकि कुछ समय से सभी विग्रहों ने वहां पर निवास किया। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी के गुरुदेव और उनके पिताजी का घर भी राधाकुंड के किनारे में है। तो जब गोविंद देव निकले हैं वहां से, तो गोविंद देव भी राधाकुंड पे रुके थे। उनका भी राधा गोविंद जी का बड़ा सुंदर मंदिर गोविंद देव का राधाकुंड पे है। और वहां से आगे आए और राधाकुंड से निकलकर राधा गोविंद जी, एक बात बताना भूल गया मैं आपको, जब राधा गोविंद जी प्रकट हुए योगपीठ में, योगपीठ के आसपास ही एक स्थान है ब्रह्मकुंड, जहाँ पर ब्रह्मा जी जाकर रोए थे पश्चाताप में, बचरे चुराने के पश्चाताप के भाव से प्रार्थना किया भगवान का, बहुत से भी दिल नहीं भरा, फिर भी उड़े और वापस उतरे और एक जगह बैठकर बहुत रोए और इतना रोए कि वहां पर एक बड़ा विशाल कुंड तैयार हो गया, उसका नाम है ब्रह्मकुंड। तो उसी ब्रह्मकुंड में रूप गोस्वामी जी को वृंदा देवी का विग्रह मिला जो बद्रीनाथ ने बनाया था। तो वृंदा देवी की, राधा गोविंद जी के मंदिर में वृंदा देवी का भी विग्रह रखा गया गोविंद देव के दाहिने हाथ में। और जब वो निकलने लगे तो वृंदा देवी, राधा गोविंद देव सब साथ में निकले। और जब वो साथ में निकले, राधाकुंड में रुके, वहां से निकले और काम्यवन में आकर यहाँ रुके। और जब यहां से निकलने का और जयपुर जाने का जब समय आया तो वृंदा देवी ने गोविंद देव से कहा कि आप तो जगत के नाथ हो, यहाँ पर भी जाओगे तो वहां पर भी आप राजा हो, सब भूमि आपकी है, आपका सब जगह पर नाथ के रूप में ही सेवा की जाएगी, लेकिन मैं तो केवल वृंदा देव वृंदावन की देवी हूँ। क्योंकि राधा रानी ने वृंदा देवी का विवाह कृष्ण भगवान से बड़े प्रेम से किया था, और जो सबसे प्रिय वन था उनका वृंदावन, वो वृंदा देवी को फेंक कर दिया, इसलिए उसका नाम वृंदावन पड़ा। कई कारण है उसके वृंदावन नाम पड़ने के, लेकिन एक कारण यह है कि वो राधा रानी ने बड़े प्रेम से वृंदा देवी को भेंट में दिया, तो वृंदावन की अधिष्ठात्री वृंदा देवी बनी। तो इसलिए वो कह उन्होंने कहा कि मैं तो केवल वृंदावन की रानी हूँ, देवी हूँ, और मैं तो यही रहूंगी और आप आगे चले जाइए। तो जो ओरिजिनल बज्रनाथ के द्वारा बनाई गई वृंदा देवी की मूर्ति है, विग्रह है, वो इस मंदिर में विराजमान है। सबसे पहला मंदिर में जो बड़े घाघरे में उनको सजाया है वो वृंदा देवी का मंदिर है। थोड़ा सा आप ना ऐसे घूम के बैठना, थोड़ा सा आप एकदम गोविंद देव को पीठ लगा कर बैठे ना। तो फिर गोविंद देव यहाँ से निकले हैं, और फिर जयपुर के राजा ने, राजा जयसिंह ने उनको वहां पर स्वागत किया है, और यहाँ पर प्रतिभु मूर्ति का स्थापना किया है। यहाँ पर मूल मूर्ति का स्थान होता है, जब किसी कारण मूर्ति वहां से चली जाती है तो जो विग्रह वहां स्थापन किए जाते हैं वो उतने ही शक्तिशाली होते हैं, उतने ही दिव्य शक्ति से आवृत्त होते हैं, लेकिन उनको प्रतिभु मूर्ति कहते हैं। जितनी मूल मूर्ति में कृपा की शक्ति होती है उतनी ही शक्ति प्रतिभु मूर्ति में भी होती है। तो जगह जगह जहाँ पर गोविंद देव रुके वहां पर प्रतिभु मूर्ति का आज स्थापना किया गया है, और जो मूल विग्रह है वो जयपुर में है। ये जयपुर के विषय में बोलना जरूरी है क्योंकि जयपुर के राजा तो थे, संपन्न तो थे बहुत, वो शूरवीर भी थे लेकिन बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। तो गोविंद जय विश्व के राजा हैं, इस भाव से उन्होंने ना अपने जयपुर राजधानी, राजस्थान की राजधानी जयपुर उस समय की थी, आज पता नहीं कौन सी है, तो अपने राजधानी में केंद्र स्थान में एक शहर के रूप में चारों दिशाओं में, जिसको चार चार दिशा में सात सात गेट है, ऐसा एक भव्य मंदिर बनाया है जो आज एक शहर की तरह ही है, मिनी टाउनशिप। चार दिशा में उसके एंट्रेंस है और सात द्वार बनाए हैं जिसमें से हाथी भी प्रवेश करता था, आज बस भी जाती है डबल डेकर, ऐसे हाथी सैन्य पूरा प्रवेश कर सकता है, ऐसा मंदिर बनाया है। और आज भी वो पूरी गौरव से वहां पर विराजमान है, उपस्थित है, इतना सुंदर है। और विशेष सोचने वाली बात यह है कि आमतौर पे राजा का महल उसकी राजधानी के केंद्र स्थान में होता है, तो राजा ने अपने महल जहां होना चाहिए उस जगह पर गोविंद देव का विग्रह बनाया, मंदिर बनाया। ये प्रमाणित कि आज भी आप जयपुर जाएंगे तो जयपुर का कल्चर जो है वो बताता है कि गोविंद देव हमारे राजा हैं। आज भी उस शहर की रचना जिस प्रकार से की गई है, आप रचना को देखकर भी समझ सकते हैं कि केंद्र स्थान में किसको रखा गया है, वो गोविंद देव को रखा गया है। उसी तरह से हमको भी अपने घर में केंद्र स्थान में जहां पर मेन जगह है उस जगह पर भगवान को रखना चाहिए। और जयपुर में न केवल उन्होंने पैसा खर्च करके मंदिर बनाया, लेकिन ऐसा कल्चर बनाया कि आज भी मंगला में 2000 लोग आते हैं, कोई उनको मंदिर से फुल टाइम डिवोटी नहीं हो, वो आम गृहस्थ है, वहां के समाज के लोग हैं, लेकिन गाड़ी साइकिल स्कूटर मोटरसाइकिल जो भी वाहन है चल के सब लोग वहां पर पहुंचते हैं 2000 के आसपास। सुबह की आरती 12 बजे की आरती में 3000 लोग होते हैं, शाम की आरती में भी 3000 लोग होते हैं, ऐसी भीड़ जो हमारे उत्सवों में होती है वहां पर हर रोज होती है। मैं एक विवाह करने के लिए वहां पर गया था, जो कैटरर था वो भी अपने कैटरिंग के बीच में 3 बार दर्शन करके आया, मुझे एक बार लेके गया, और मैं भोग लगाने गया, मुझे लगा कि भोग लगाऊंगा शादी का भोजन है, तो उसने ऑलरेडी उसका सब भोग गोविंद देव को फोटो को लगा दिया। और वो कहते हैं मैं कहीं भी कुछ भी काम करता हूँ दिन में 3 बार दर्शन करके आता हूँ। इतना इनबिल्ट कल्चर है हृदय के अंदर, चाहे कुछ भी व्यवसाय हो, ब्राह्मणिकल हो, क्षत्रिय हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, लेकिन गोविंद देव सबके जीवन के केंद्र स्थान है। वो कल्चर राजा की जयपुर के राजा ने प्रस्थापित किया था, ये समझना बहुत जरूरी है। और आज हम लोग सब उस कल्चर को खो रहे हैं, है ना, हमारे सारे भगवान कभी कभी टॉवर के अंदर होते हैं और हम बड़े महल में रहते हैं, बेडरूम में बड़े रहते हैं। तो ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, उसका मतलब क्या है कि अभी हम अपने जीवन के केंद्र स्थान में हैं, आई एम एट द सेंटर ऑफ माय लाइफ, अभी उस जगह भगवान को रखना है, खुद को रिप्लेस करके भगवान को रखना है, उसको ही कृष्णा कॉन्शियसनेस कहते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस की बाहर की प्रक्रिया बहुत सारी है, जो हम जप करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, चार नियम पालन करते हैं, ये फिर भी उसके बाह्य अंग है। अंतरंग बदलने के लिए आवश्यक अंग है वो। अंतरंग में बदलना क्या है, जहां पर हम बैठे हैं अपने हृदय के सिंहासन पर, वहां पर कृष्ण को बैठाना है। तो जयपुर के राजा ने अपनी बाह्य कृति से ये अंतरंग का रहस्य जो है वो हमारे लिए कल्चर को स्थापन करके प्रकट किया उन्होंने। इट्स नॉट इजी टू एस्टैब्लिश अ कल्चर जो आज 400 साल के बाद में लोग अपने आप मंगला में पहुंचते हैं, कोई उनको अटेंडेंस नहीं वहां पर, कोई उनको कुछ तनख्वाह नहीं मिलनी है उसकी वजह से। लेकिन जो श्रद्धा के लिए जो एक कल्चर संस्कृति स्थापन किया उन्होंने वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों का सबका कर्तव्य है आज की तारीख में कि हम लोगों को उस तरह से शिक्षा दें, परवरिश दें कि भगवान हमारे जीवन में केंद्र स्थान में आने चाहिए और मुझे वहां से निकालकर बाजू में रखना चाहिए। इसी को कृष्ण कॉन्शियसनेस कहते हैं। और बाह्य तरीके से हम बड़ी बड़ी बातें कर भी नहीं पाएंगे अगर, लेकिन हृदय में अगर कृष्ण को स्वामी समझते हैं और अपने को दास समझते हैं तो हमारा जीवन धन्य है। तो इसलिए जयपुर जाकर बहुत प्रेरणा मिलती है, बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है, क्योंकि एक घर में मंदिर बनाना और घर में पूजन करना एक बात है, लेकिन पूरे शहर को कृष्ण कॉन्शियस बनाना पूरे इफेक्टिवली, हाँ एकदम परिणामकारक रीति से, इट्स इजी एक्चुअली। तो राजा के अंदर कितनी भक्ति होगी, राजा के अंदर कितना कन्विक्शन, कितना विश्वास होगा, जिसकी वजह से खुद तो भक्त था ही लेकिन अपने प्रजा को पूरा उसने इस तरह से गाइड किया, इस तरह से उनके जीवन को परवरिश दिया। 400 साल के पश्चात भी उसकी चेतना का परिणाम हमें जयपुर में दिखाई पड़ता है। द इफेक्ट ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द किंग ऑफ जयपुर जुड़े और तो ऐसा प्रभाव होना चाहिए, जब दिल से कोई काम होता है ना तो उसका ऐसा दिव्य प्रभाव दिखाई देखने को मिलता है। तो ये आपके सामने राधा गोविंद जी हैं, वृंदा देवी हैं, और जगन्नाथ का विग्रह गौर निताय का वो बाद में रखा हुआ है। तो इस तरह से ये मूल स्थान है। एक्चुअली काम्यवन को प्राथमिक दृष्टि से वृंदा देवी का स्थान के रूप में पहचाना जाता है, तो इसके बाद में सारे स्थानों का वर्णन होता है। तो सोचा कि अभी आगे जाकर कथा करना थोड़ा मुश्किल होगा, वहाँ पर जगह नहीं है वैसे, तो एक एक करके सभी स्थानों का आपको वर्णन मैं यही बता दूंगा।